मेयर साहब, भाइयों और बहनों, इस मौके पर मुझे डॉक्टर पीसी रॉय याद आते हैं। क्यों कि जब मैं देश बंधु के वहाँ रहता था, उसी जमाने में डॉक्टर रॉय वो अपना क्लब लगाते थे, और वो क्लब, ये स्मारक है, उसके उसकी छाया में रहता था। आपको जानना चाहिए कि उनके साथ तो मैं उनके घर पर सन 1901 की साल में, शायद उससे भी पहले, एक महीना भर रहा था। तो मैंने उनको पूछा कि आप वहाँ क्या करते हैं और कितने मेंबर हैं। तो उनके मेंबर तो 3 या 4, शायद 5 होंगे, और सब मित्र थे, सब शास्त्रज्ञ थे, तो मिलते थे और वही उनका आराम, वही उनकी मजे और सब कुछ हो। कुछ वहाँ खाते पीते हैं, तो उन्होंने कहा कि वहाँ घाट पर बैठे बैठे खाना पीना क्या था, लेकिन हम तो आपस में मिल लेते हैं और कुछ ज्ञान वार्ता करते हैं, और उसमें से जो हमको मजे मिल जाती है वो दूसरी तरह से नहीं मिल सकती है। तो उसको उसका स्मरण तो होना ही चाहिए था कि इसी जगह पे आज हम लोग सब मिले। अब आपका जो मांग पत्र मुझको मिला है, ये आपको समझना चाहिए कि कलकत्ता कॉरपोरेशन की तरफ से ये मुझको 300 रुपये मिलता है। मैं इनकार तो क्या कैसे कर सकता था कि मुझको अभी मांग पत्र लेकर क्या करोगे। मैं तो आप लोगों का सेवक हूँ और इत्तेफाक से यहाँ आज पढ़ा हूँ। क्यों पढ़ा हूँ वो तो मैंने दूसरे मौके पर बता दिया है, तो उसमें तो मैं जाना नहीं चाहता हूँ। लेकिन जब ये मुझको शहीद साहब ने कहा, तो वहाँ तो एक छोटा सा मांग पत्र भी तुमको दिया जाएगा, तो दे या न दे, तो मैंने कहा कि अभी मैं इनकार करूँ वो भी तो कोई अच्छा नहीं होगा, और उसमें कोई आडम्बर सा भी उसकी बू आ सकती है। तो मैंने कहा तो अच्छा वो दे दे, तो आपने दिया है। लेकिन आपको जानना चाहिए कि मैं तो बहुत लोभी आदमी पड़ा हूँ, और लोभी भी किसके लिए, हरिजनों के कारण। तो मैं मुझको जो पहले दफे और दूसरे दफे जो तस्तरी वगैरह मिल गए थे, तो उनका मैंने नीलाम कर दिया था। दूसरे दफे मेरा ऐसा ख्याल है कि नरेंद्र बाबू वो मेयर थे, तो उनके हाथों से वो नीलाम कर किया था, और वहीं कुछ कोई मारवाड़ी सज्जन थे, ऐसा मुझको लगता है। हमेशा वो मुझ पर रहम करते हैं और ऐसे मौके से कुछ न कुछ मुझको दे देते थे। तो उन्होंने मेरा ऐसा ख्याल है कुछ 5,000 रुपया मुझको दे दिया। तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि मुझको अगर सचमुच आपको धन्यवाद देना है इस मांग पत्र के लिए, तो मेयर साहब मेरे हाथ में से वो चीज़ ले तस्करी, और जिसमें मांग पत्र रखा गया है बहुत खूबसूरत है, मैं मानता हूँ, वो सब आप कोई भी दे दें, यहाँ मैं नीलाम नहीं करूँगा, इतना समय ही नहीं है। तो मैं तो उनको कह दूँगा कि आप कम से कम, उस वक्त तो कुछ 5,000 रुपया मिला, शायद ज़्यादा मिला होगा, मैं तो भूल गया हूँ, तो इसका भी कुछ ऐसा दे दें तो वो हरिजनों के दफ्तर में वो चीज़ चली जाएगी। तो यहाँ भी तो आपके पास हरिजन तो काफ़ी पड़े हैं, वो भी मैं जानता हूँ, और यहाँ हरिजन बस्तियाँ भी कलकत्ता में काफ़ी पड़े हैं। तो जब देश बंधु के हाथ से मुझको मांग पत्र मिला था, तब मैंने कहा था कि आपका मांग पत्र से मैं सचमुच राजी तो तब होऊंगा कि कलकत्ता ये सारी दुनिया में स्वच्छता के लिए, सैनिटेशन के लिए पहला नंबर ले। यूँ तो हिंदुस्तान में कलकत्ता का नंबर पहला है, आबादी में, व्यापार में, इतने जहाज चले आते हैं उसमें, उससे कोई मेरा पेट तो नहीं भर सकता है। कोई मुझको दूसरी चीज़ें भी बता दे कि देखो कलकत्ता में ये है वो है, उससे भी नहीं हो सकता है। लेकिन कोई ये कह सकता है कि कलकत्ता में सबसे ज़्यादा मृत्यु संख्या आती है कलकत्ता में, कलकत्ता के बहाने, कलकत्ता के रास्ते, सब चीज़ ऐसी स्वच्छ है, ऐसी सुंदर रहती है कि जिस जगह पे बाहर से भी यहाँ तो बहुत लोग आ जाते हैं तो खुश हो जाए। और जैसा बर्मिंघम भी नहीं है, ग्लासगो भी नहीं है, जोहानिसबर्ग भी नहीं है, तो आपको समझना चाहिए कि मैं तो बर्मिंघम में तो चला गया हूँ और क्या उसका इतिहास है वो भी मुझको तो मालूम है, और कैसा खूबसूरत वो तो चेंबर शायद चेंबर लेन ने बना दिया, और उसके बाद तो वो पीछे मशहूर हुए, प्रधान भी बन गए। लेकिन उन वो सचमुच जो उनका काम था वो तो बर्मिंघम को एक सुंदर बनाना। तो हरेक मेयर का ये पेशा होना चाहिए कि अपने हाथ में एक शहर आ गया है तो उसको सच्चा जौहर बना दे। ऐसा आज कलकत्ता नहीं है इतना मैं जानता हूँ। कलकत्ता में इतनी बदबू रही है, इतना मेल भरा है, कलकत्ता में काफ़ी व्याधियाँ भी पैदा हो जाती हैं, बच्चे दूध नहीं मिलता है इसलिए मरते हैं। तो गरीबों को तो बात क्या पूछो, कोई मुझको सुना सकता है कि कलकत्ता में तो दूध की नदियाँ बैठी, जितना दूध चाहिए इतना मिल सकता है, नहीं मिलता है वो तो मैं जानता हूँ, क्यों मिलना चाहिए उसमें मुझको कोई शक नहीं। लेकिन कलकत्ता की कॉरपोरेशन जब ऐसी बनी, उसमें जितने जितने सदस्य पड़े हैं उनकी डिग्री भी ऐसा हो कि हमको अपना काम नहीं करना है, कलकत्ता का काम करना है, तब तो कलकत्ता ऐसा सुंदर शहर बन सकता है। और जैसा बाहर ऐसा भी भीतर होना चाहिए। तो कलकत्ता में आप मुझसे तो ज़्यादा जानते हैं कि इतने गुंडा भरे हैं, इतनी गंदगी कलकत्ता में फैल गई है। और एक भाई ने तो मुझको लिखा वो गोहत्या न हो इसलिए कानून बनाने की बात कहते हैं, तो वो मुझको लिखते हैं, अच्छा लिखते हैं, वो कहते हैं कि कलकत्ता में किस तरह से गवारी लोग काम करते हैं वो तो देखो, और वो तो हिंदू पड़े हैं, तो वो यहाँ कलकत्ता में फूका की क्रिया होती है आप नहीं जानते हैं, और बाहर नहीं भी जानते हो, बहने शायद नहीं जानते, उनको मैं खबर देना चाहता हूँ कि कलकत्ता में फूका की क्रिया होती है, और फूका की क्रिया तो ऐसी निर्दय है कि जो कोई इंसान भी नहीं कर सकता, मैं उसके भी ध्यान में नहीं जाना चाहता हूँ। तो इतना तो मैं आपके मानपत्र के बारे में कहना चाहता हूँ। और कलकत्ता की कॉरपोरेशन को अभी तो बहुत बड़ा काम आ गया है, ये भी एक स्वच्छता का ही काम है कि सबको हिंदू मुसलमान आज तो हम कहते हैं कि सब एक सा हो गया है, लेकिन सच्चा एक सा तो तब होंगे कि जब कलकत्ता के जितने कॉरपोरेशन के सदस्य हैं वो अपना अपना ये धर्म मान ले कि अब हम हमेशा के लिए हिंदू मुसलमानों में कुछ भी झगड़ा न हो इसके लिए हम काम करें, तब तो मैं समझता हूँ कि वो कायमी चीज़ हो जाएगी। इतना तो मैं आपको आपके मानपत्र के बारे में कहना चाहता हूँ। लेकिन मुझको तो काफ़ी चीज़ हमेशा जैसे कहता हूँ ऐसी सुनाने की है, तो मैंने कुछ तो याद रख लिया। तो पहले तो मैं चिटागांव का ही स्मरण करूं, तो मुझको वो ईस्ट बंगाल के प्रधानमंत्री है वो कहते हैं कि बर्मा से कुछ 1500 टन या तो अधिक आ सकते हैं, लेकिन आज बर्मा की गवर्नमेंट ने ऐसा ही कह दिया है कि 1500 टन के उसके नज़दीक हम चावल तो भेज सकते हैं, तो आने चाहिए, 2-3 दिन में वो जहाज आना चाहिए। तो क्या वो वहाँ से 1500 टन चावल तो नहीं दे सकते हैं, इतना मैं लोग भी नहीं कर सकता हूँ, नाजीमुद्दीन साहब कहते हैं, लेकिन कम से कम 500 टन तो दे दें। तो कलकत्ता में तो अरे वो चिटागांव में लोग मर रहे हैं, वो बात तो सच्ची है, इतने मेरे पास तार भरे हैं, कोई मुझको लिखते भी हैं तो उसका क्या करें। तो मैं मानता हूँ कि वो 500 टन तो उनको मिलना ही चाहिए, कुछ भी हो वो तो राजेंद्र बाबू के हाथ में वो चीज़ पड़ी। मेरा ऐसा ख्याल है कि वो मेंबर आज भी उसी काम के लिए तो हैं, तो उनको मैं तो यहाँ से ही प्रार्थना करूँगा। तार तो आज पहुँचते नहीं है जल्दी से, ये ज़्यादा में कल फजर में तो उनको ये पता चल जा सकता है। कोई साहसिक अखबार नवी शेर तो आज रात को भी भेज सकते हैं तो, के गांधी ने तो ये आपको प्रार्थना की है कि 500 टन वो तो आप चिटागांव भेज, और जो जहाज आएगा उसको जहाज को चिटागांव रोक सकते हैं क्योंकि वो तो बड़ा बंदर है, तो वहीं रोक लें तो गरीबों को 500 टन तो मिल जाए। कोई ऐसा न माने, मुझको ऐसे तार आते ही सही कि वहाँ जो ऑफिशियल लोग हैं वो सिर्फ मुसलमानों को ही लेते, थोड़े हिंदू हैं, बहुत नहीं है, लेकिन उसमें गरीब भी बड़े हैं। उसमें आज तो किसी के पास, तवंग के पास भी चावल कहाँ है, पैसे तो हैं लेकिन चावल कहाँ से उनको मिले, खाना नहीं है, पीना नहीं है, कुछ मिलता नहीं है। तो वो अगर हैं तो वो तो दुरुस्त होना चाहिए। मैं नहीं कभी भी कबूल करने वाला हूँ कि वो पाकिस्तान गवर्नमेंट वहाँ पड़ी है, वो कभी इस चीज़ की बर्दाश्त भी कर सकते हैं कि नहीं हिंदू को मरने दो, उसको कुछ देना नहीं। लेकिन आज बेचारे जो अमलदार हैं उनको एक किस्म की तालीम दी गई है, वो फिरस्ता कहाँ से जल्दी बनने वाले थे। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो मेरी तो उम्मीद है कि वो कभी होने वाला नहीं है। और हिंदू क्या, मुसलमान क्या, जो कुछ भी वहाँ चिटागांव में पड़े हैं उनको ये मदद मिलनी चाहिए। इतना तो मैं आपको चिटागांव के बारे में मैं कहना चाहता हूँ। अभी दूसरी बात, ये खबर आ गई तो शहीद साहब को भी वो खबर मिली, मुझको भी खबर मिल गई कि वो मुझको आज तो पता चला। तो हिंदू महासभा के जो प्रमुख है डॉक्टर चैटर्जी, वो मुझको मिल गए। तो उन्होंने मुझको कहा कि मैं तो तुमको मीठी खबर देने के लिए आ गया हूँ, थोड़ी कड़वी भी है लेकिन मीठी में पहले करूँ। तो उन्होंने ये कहा कि वहाँ तो गोवा मंडा से शुरू हुआ तो उन्होंने ये देखा कि अभी हिंदू मुसलमान मिलजुल कर रहे थे, और जिस जगह पे ऐसा मौका था को किसी ने डर भी उनको दिया था कि वहाँ तो मुसलमान तो कोई देखने भी नहीं आएगा, शायद हिंदू ही मिलेंगे। लेकिन हुआ ऐसा कि अपनी ही इच्छा से मुसलमान भी आ गए, हिंदू भी आ गए, जैसे कि कभी आपस में लड़ते ही नहीं। ऐसा नजारा उन्होंने अपनी आंखों से देखा और खुश हो गए कि इस तरह से चलता है। और वहाँ ऐसा बना कि वो हिंदू महासभा में के भी जो है ना नेशनल गार्ड, या तो कुछ भी नाम तो मैं भूल गया हूँ, और लीग के तो नेशनल गार्ड है, तो वो भी दो आपस में मिले जुले, और जैसे कि वो लड़ते ही नहीं थे, इस तरह से वो रहते थे, ऐसा उन्होंने सुनाया। और पीछे भीतर चले गए तो भीतर भी उनको ये तो देखने में आया, वो तो अच्छा था। लेकिन जब वापसी में आए तो उन्होंने देखा कि हाँ कुछ तो बीमारी पैदा हो गई, तो वो तो चांदपुर में हुई और कोई दूसरी जगह भी मैं तो भूल गया। क्या हुई कि उन लोगों ने ऐसा सुन लिया कि कचरा पारा में कुछ हो गया है, तो वहाँ हिंदुओं ने ऐसी जाति की कि मुसलमानों का खून हो गया, और बस वो दोनों के बीच में लड़ाई हो गया और जेल फेंक गया। ये उनको कहाँ से मिला, तो वो तो अखबारों के मार्फत से मिल सकता है, और पीछे कोई आदमी चले जाते हैं तो जाने वाले ऐसा एक ही 10 बना देते हैं, तो वो मुसलमानों को पीछे गुस्सा आ गया। मैं कबूल करूँगा कि वो गुस्सा नहीं आना चाहिए, अगर उन्होंने एक वक्त मान लिया कि हिंदू एक जगह पे जंगली हो जाते हैं तो क्या हम भी जंगली बन जाएं, और ऐसा एक दूसरों का बदला लेने का ही हम हमेशा के लिए कायम रखें तो हम कभी एक दिन तो बनने वाले नहीं है। लेकिन उन्होंने उसको सुनाया कि ऐसा चांदपुर में हो तो गया, बहुत तो कुछ खराबी तो नहीं हुई, लेकिन हुई तो सही, कुछ बिगड़ा भी सही। तो मुझको ऐसा लगा कि मैं यहाँ से करूँ, और शहीद साहब ने छोटा सा कह तो दिया कि वहाँ क्या हुआ, तो मैं भी तो वहाँ चला गया था, तो मैं आपको कह सकता हूँ कि वो लड़े तो सही, उसमें कोई शक नहीं है, कुछ एक का ही गुना था ऐसा भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन हिंदू वहाँ अक्सरियत में है तो हिंदू को तो बर्दाश्त कर लेना चाहिए अगर कैसा कुछ हो भी गया तो मैं कहूँगा कि वहाँ गुनेगार तो हिंदू को ही मानना वो मेरे लिए तो मुनासिब है, तो उनको काफ़ी डांटा, लेकिन पीछे उन्होंने क्या किया वो तो देखने लायक बात है। तो उन्होंने ही कहा और मुसलमानों ने भी कहा कि अभी हम तो भूल जाने वाले, हमको कुछ जहर है ही उसका, हम किसी चीज़ की डांट भी नहीं चाहते हैं कि हिंदू को कह दो, हम तो आपस में मिल गए हैं, पूरे पूरे नहीं मिले थे, वो भी मैं आपको कबूल करना चाहता हूँ, लेकिन आखिर में पीछे काफ़ी हम बैठे थे तो वो उन्होंने तय किया कि हमको मिलना ही है, और आखिर में पीछे हिंदू और मुसलमान दोनों ने कहा कि हम जिस जगह पे रहते हैं एक अमन सामन बैठे हैं एक ही गली में, कि इस बगल हिंदू है तो सामने मुसलमान, वो बेचारे मिस्किन हैं गरीब हैं, वो वहाँ तो एक बड़ा वर्कशॉप पड़ी है, कहते हैं कि सबसे बड़ी है हिंदुस्तान में, तो वहाँ करीब 50,000 थी, जितना वो कोई भूल गया शायद कम है, लेकिन उसमें हिंदू है मुसलमान दोनों कारीगर पड़े थे, वो लोग काम करते हैं, इसमें से ये झगड़ा हो गया तो शर्मिंदा बने के, वो झगड़ा भी नहीं होना चाहिए था, तो आखिर में हम गए, हिंदू भी थे मुसलमान भी थे, अच्छी तरह से दोनों ने पेट भर के नारा भी पुकारा, और हमने तो ऐसा ही समझ लिया कि यहाँ तो अभी कुछ हुआ ही नहीं, इस तरह से वो चले। तो उसको अगर कोई भी अखबार दौरा के कहें कि यहाँ तो ऐसा हो गया है, या तो कोई आदमी चला जाता है मुसाफर और पीछे चांदपुर जाता है, या तो किसी भी जगह पे जाता है उसको बनाता है और पीछे जहर फैलाता है, तो वो गुनाह करता है, लेकिन जहर फैलावे तो भी उनको जहरी क्यों बनना। तो मैं ये कहूँगा कि चांदपुर में जो हो गया वो नहीं होने के लायक बात है, लेकिन मैं आपको कह तो दूँ कि इस तरह से वहाँ हो गया, और कचरा पारा में आखिर में क्या हुआ वो भी मैंने सुना दिया, कि जिससे वहाँ के मुसलमान हैं वो सबके समझ लें कि अभी किसी मुसलमान को पागल बनना ही नहीं, आखिर में नवखाली में तो उनको उनके हाथों में इस्लाम पड़ा, इस्लाम की खूबसूरती बनाना, इस्लाम की खूबियाँ बताना, वो नवखाली के मुसलमानों के हाथ में है, ढाका के मुसलमानों के हाथ में, चिटागांव के मुसलमानों के हाथ में है, और मैं सुनता हूँ अभी कि सिलहट में हो गया, सिलहट तो था आसाम में और अभी पाकिस्तान में आ गया, तो वहाँ के जाहिल मुसलमान हर किस्म की चीज़ें कर लेते हैं, काफ़ी वहाँ हिंदू पड़े हैं, शरीफ मुसलमान पड़े हैं, वो उनको शांत रखने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन जल्दी से वो शांति पैदा नहीं होती है, तो इसलिए मैं तो ये कहूँगा कि इससे न हिंदू को घबराहट में पड़ने का है, न किसी जगह पे मुसलमान को घबराहट में पड़ने का है, और सारा का सारा जो पाकिस्तानी बंगाल है, और यहाँ जो वेस्ट बंगाल है उसको हिंदुस्तानी बंगाल का, तो दोनों को मिलजुल कर रहना है, जैसा शहीद साहब ने अपनी अंग्रेजी जबान में कह दिया कि वो हिंदू को और मुसलमान को इस तरह से मिलजुल कर रहना है कि वो भूल जाए कि हम अलग 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 हुकूमत के माथे पर, हुकूमत जब आपस में मिलजुल कर दोस्ताना तौर से काम करे तो मुझे क्या वजह है कि हिंदू और मुसलमान आपस में झगड़े, या तो यूँ समझे कि हम तो अलग अलग हैं और कभी एक हो ही नहीं सकते हैं। तो उसमें तो पीछे ऐसे भी हो जाता है ना कि ये काम जो बिगड़ जाता है तो उसमें क्या करना चाहिए, तो मैं ये समझता हूँ कि वो जितने लीडर्स पड़े हैं, क्या हिंदू क्या मुसलमान, तो उन लोगों को आज तो एक ही काम करना है कि जो हम तो गरीब उस वक्त जहर भी फैलाए, वो जहर को अभी पकड़ लेना और उसको फेंक देना वो जल्दी से नहीं हो जाता, तो इसलिए आज जो अपने को लीडर्स मानते हैं उनका एक ही पैसा हो जाता है, ख्वाह हिंदू है या तो मुसलमान है, कि बाकी जो आम लोग हैं उनको बताना कि अभी आप भूल जाएं कि आप मुसलमान है और ये हिंदू है, और वो झगड़ा का बायस हो सकता है। झगड़ा का बायस अभी बिल्कुल मिट गया है, ऐसा अगर नहीं होगा तो मुझको डर है कि कलकत्ता में इतना हो तो गया है लेकिन उसका पूरा फायदा हम उठाने वाले नहीं। और एक दूसरी बात भी, मुझको तो जब मैंने सुना तब सुना कि यहाँ जितने मुसलमान थे वो पहले पहले तो कहते थे, वो एक निकला था वहाँ से सेंटर में से, और वो 15 तारीख के पहले से निकला था कि जितने मुसलमान कहीं भी पड़े हैं उनको पसंदगी करना है कि वो पाकिस्तान में जाएंगे, अगर हिंदुस्तान में थे तो कि हिंदुस्तान में ही रहें। और इसी तरह से हिंदू जो पाकिस्तान में पड़े थे वो पाकिस्तान में रहेंगे कि वो हिंदुस्तान में आ जाए। तो उस वक्त तो पागलपन अभी कहाँ मिटा है पूरा का, तो पागलपन में वो हिंदू ने कह दिया अच्छा हम तो हिंदुस्तान में जाते हैं तो चले आए, और मुसलमानों ने मान लिया कि अच्छा तो यही है कि हम तो पाकिस्तान में चले गए। और अभी होता क्या रहा है कि इतने मुसलमान वहाँ कराची में चले जाते हैं, इससे कोई पाकिस्तान बहुत ऊंचे जाने वाला है वो मैं मानने वाला नहीं। मुझको तो शर्म आती है कि इस तरह हो गया कि हिंदू कोई आराम से पाकिस्तान में रह नहीं सकता, या तो कम से कम अमलदार तो हो ही नहीं सकता। तो इसका यही मतलब हो गया क्या कि पाकिस्तान है वो मुसलमानों का ही अमल वहाँ हो सकता है, और कोई हिंदू अमलदार तो बन नहीं सकता है, कोई हिंदू एजुकेशन इंस्पेक्टर भी पीछे कैसे बने, पीछे डॉक्टर भी कैसे बने, क्या बने और क्या नहीं, कहाँ तक हम इस चीज़ को ले जाएंगे उसको पता नहीं है। और यहाँ तो यहाँ ऐसा ही करें कि नहीं कोई मुसलमान डॉक्टर पाकिस्तान वो हिंदुस्तान में देखने नहीं आना चाहे, वो है तो दरिया में चला जाए या तो वो पाकिस्तान में चला जाए। ये अगर है सचमुच दोनों का दिल तो मैं क्या कहूँ कि हमने एक जहर बोया है, जो बीज हमने डाला है वो जहर था, अभी वो उसको मिटाना दूर करना तो वो तो दोनों कौम और दोनों के लीडर मिलकर वो काम करे तब हो सकता है, वो हो गई गलती। तो मैं तो कहूँगा कि यहाँ हमारे वेस्ट बंगाल के मिनिस्टर है उनसे भी कहूँगा, और ईस्ट बंगाल के मिनिस्टर है ख्वाजा साहब को, और यहाँ प्रफुल्ल बाबू को, दोनों को मैं कहूँगा कि आपस में मिलकर कुछ तय तो करो कि कोई मुसलमान अगर ऐसा चाहता है कि मैं तो वेस्ट बंगाल में पढ़ा था, वहीं मेरे बच्चे कच्चे सब थे, अभी मैं नवखाली में क्यों रहूँ या तो ढाका में क्यों रहूँ, तो उनको वापस भेजे। यहाँ प्रफुल्ल बाबू को पूछें कि इस तरह से होना, यहाँ से कोई हिंदू एक मूर्खता से गलती से वहाँ था अमलदार कल और यहाँ से भागा, और ऐसा कि अभी तो मैं रह नहीं सका बच सकूँगा पाकिस्तान में, अगर ऐसे अमलदार लोग बुजदिल बन जाए तो दूसरे बेचारे आम वर्ग है वो कैसे वहाँ निभ सकते। इसलिए मैं तो कहूँगा कि दोनों वजीरों को मिलकर आपस में टेक करना चाहिए कि जिस मुसलमानों को अपना दिल बदल दिया है और कहते हैं कि हम वेस्ट बंगाल में जाए, और कोई हिंदू कहते हैं कि जो वहाँ से आ गया है कि हम तो पाकिस्तान में चले जाएंगे, तो उनको जाने की इजाज़त मिलनी चाहिए। लेकिन मैं ये कहूँगा कि वो झूठे तरीके से कोई दिल में मेल करके सचमुच वो दिल से मानते हैं तब तो उनको ये करना चाहिए, और दोनों वजीरों को भी ऐसे करना चाहिए, उस बारे में मेरे दिल में कोई शक नहीं। तो वो तो मैंने आपको ये ऑफिसर लोगों के लिए कह दिया, अभी खुलना की बात मेरे पास आ गई है। मुझको बुरा लगता है कि अभी खुलना में वो तो खुलना तो 15 तारीख के रोज तो पता नहीं था कि खुलना वो पाकिस्तान में गया है, वहाँ वो अक्सरियत हिंदुओं की है तो हिंदुओं ने वहाँ तो मनाया, वो हिंदुस्तान मनाया या तो यूनियन डे मनाया, अभी तो वो तो पाकिस्तान में चला जाता है, तो मुसलमान क्यों न मनावे कि ये अभी तो पाकिस्तान में आया है तो हम उसको मनाए। मैं कहूँगा अगर मैं मुसलमान हूँ तो अभी तो वहाँ चल रहा है 24 तारीख और 25 तारीख या तो 26 तारीख, मुझको कोई याद नहीं है, लेकिन मुझको तो कोई पता नहीं था, लेकिन वो मुझको डॉक्टर चटर्जी ने बताया कि ऐसी कोई बात है, तो मैं तो भूल गया हूँ। काफ़ी लोग मुझको मिल जाते हैं तो मुझको लगा कि नहीं उस बारे में मुझको कहना चाहिए, तो अभी तो हो रहा है, वो तो कोई चीज़ तो पहुँचने वाली नहीं, तो शहीद साहब को मैंने बताया कि ये बात है, उसका क्या, तो वो कहते हैं कि उसमें कोई भय रखने की का कोई डर रखने की गुंजाइश नहीं है, वहाँ रोक पड़ी मनाएंगे तो सही, अभी वो रोकना चाहिए तो वे अभी तो नहीं रोक सकेंगे, लेकिन मुझको ये पता चला है शहीद साहिब कहते हैं कि वहाँ तो मनाने वाले हैं, तो हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर मनाने वाले हैं, तब तो मैं खुश हो गया। अगर ऐसा ही है तो मैं तो दोनों को धन्यवाद दूंगा, मुबारकबादी दूंगा कि इस तरह से अगर मना है तो भले, क्यों कि अगर दूसरी तरह से हम मनाते हैं तो उसका बुरा असर यहाँ तो सही लेकिन दूसरों पर भी पड़ेगा। मैंने कल तो कह दिया था कि वो नमोशुद्ध रहे तो अभी घबराहट में पड़े कि हम क्यों, उनका तो काफ़ी तादाद में पड़े हैं, एक 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 ऐसा पॉकेट बन गया है, तो वो दूसरा करे भी क्या, उसमें तो बीच में पड़े हैं, तो वो अभी घबराहट में पड़े हैं, तो वो पीछे यहाँ अगर इस तरह से मनाते हैं तो वो भी कुछ मनाने का चेष्टा करे, सब जगह से जिस जगह पे हिंदुओं को बुरा लगा है तो वहाँ मनाने की चेष्टा करे, तो हमारा काम बिगड़ जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि वो मनाना क्या था, जो कुछ भी हुआ, हम पाकिस्तान में रहे तो भी क्या है, हिंदुस्तान में रहे तो भी क्या है, सब हमारा देश है और हम उसी देश के पड़े हैं, पीछे हम पाकिस्तान में आज हैं अथवा हिंदुस्तान की परवाह नहीं, और हम हिंदू है तो भी क्या, मुसलमान है तो भी क्या, तब तो मैं समझूंगा कि ये जो हमने कलकत्ते में शुरू किया है वो ठीक है, अगर ये नहीं होता है तो मुझको डर है कि कलकत्ते का तो एक सोडा वाटर बॉटल जैसा बन जाए और पीछे खुश होकर वो निकल जाए, गैस निकल गया और ख़त्म हुआ और शायद बॉटल भी फूट जाए, तो ऐसा अगर हमने किया है तो किसी शर्म की बात होने वाली है, और मायूसी भी कलकत्ता के शहरियों को कितनी होने वाली है, तो कलकत्ता के शहरियों को तो पूरा पूरा समझकर ये काम को करना है, और करें तो पीछे उसकी जो खुशबू है वो सारे हिंदुस्तान में चली जाएगी, तो माने हिंदुस्तान जो पुराना हिंदुस्तान जिसमें पाकिस्तान आ गया और हिंदुस्तान आ गया उसमें वो काम हो सकता है। तो मेरी आखिर की तो ये प्रार्थना रहने वाली है, वो हम करें, लेकिन बाउंड्री कमीशन का या तो रेडक्लिफ साहब का जो अवार्ड बना है उस अवार्ड पर हमको कायम देना ही चाहिए, देना है उसको, अगर कोई भी उसमें तब्दीली करना चाहते हैं तो दोनों सल्तनत दोनों हुकूमत मिलकर आपस में फैसला करें, तब तो हम शांति से रह सकते हैं, अगर नहीं तो पीछे वो जिनके दिल में बुरा लगा है वो अपने दिल में वो बुरी चीज़ रखे और रखे, पीछे किसी न किसी तरह से उसको बदलने की कोशिश करे, बदलने की शराफत से कोशिश एक ही बन सकती है, वो मैंने आपको बता दिया है कि दोनों हुकूमत मिलकर कुछ भी करना चाहते हैं वो समझें कि इससे हम ज़्यादा आपस में मिलजुल कर रह सकते हैं तो करें, अगर दोनों हुकूमत मिलजुल कर कोई नहीं कर सकते हैं तो जो अवार्ड बना है उस अवार्ड पर कायम रहकर सबको रहना ही चाहिए, वैसे वो मुसलमान है तो भी हिंदू है, हिंदू में नमोशुद्र हैं, वो बुद्धिस्ट पढ़े हैं, कोई भी पढ़े मुझको परवाह नहीं है, और मुझको तो मैंने कल कहा कि डर ही मैं तो रखता ही नहीं हूँ कि पाकिस्तान में रहूँ तो भी क्या, हिंदुस्तान में रहूँ तो भी क्या, सब मेरा मतलब है, और मुझको कौन खा जाने वाले हैं, अगर मेरा दिल साफ है और मेरे साथ ईश्वर पड़ा है तो सारी सल्तनत सारी दुनिया मुझको खा नहीं सकती है, तो एक हिंदुस्तान के दो टुकड़े बने उसमें से एक टुकड़ा क्या एक मेरे जैसा मिस्किन को खाने वाला है, और इसी तरह से किसी को खाने वाला नहीं है, इसमें मुझको कोई शक नहीं, मेरा काम हो गया।